ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की दो दिन की यात्रा पर जेद्दाह पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में उम्मीद जताई है कि उनकी इस यात्रा से भारत और सऊदी अरब के संबंध और अधिक मजबूत होंगे। श्री मोदी सऊदी अरब के शहजादे और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर सऊदी अरब गए हैं। ये उनकी सऊदी अरब की तीसरी यात्रा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर श्री मोदी की सऊदी अरब की यात्रा दोनों देशों के बीच गहरी रणनीतिक साझेदारी को दर्शाती है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि सदी का भविष्य भारत और अमेरिका के बीच साझा व्यापारिक संबंधों पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने आधिकारिक तौर पर व्यापार वार्ता की शर्तों को अंतिम रूप दे दिया है। जयपुर में एक सम्मेलन में श्री वेंस ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति की आलोचना भले ही हो रही हो, लेकिन उन्होंने संतुलित व्यापार का माहौल बनाया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत अमेरिका का सबसे करीबी और विश्वसनीय साझेदार है। अमेरिका भारत को विश्व स्तरीय रक्षा उपकरण उपलब्ध कराना चाहता है। श्री वेंस ने भारत में नए मकान बनाने और सुविधाएं विकसित करने में साझेदारी पर भी बल दिया।
Both of our governments are hard at work on a trade agreement built on shared priorities, like creating new jobs, building durable supply chains, and achieving prosperity for our workers. In our meeting yesterday, Prime Minister Modi and I made very good progress on all of those points. And we are especially excited to formally announce that America and India have officially finalized the terms of reference for the trade negotiations.
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम का उद्देश्य गरीब मुसलमानों को लाभ पहुंचाना और संपत्ति का दुरुपयोग रोकना है। वक्फ सुधार और जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत मुंबई में आज संवाददाता सम्मेलन में श्री रिजिजू ने कहा कि भारत जैसे बड़े देश में जमीन के एक एक इंच का उचित उपयोग होना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि अब से वक्फ बोर्ड मनमाने ढंग से किसी भी गांव को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर पाएंगे। मध्य प्रदेश के दामोह जिले में आज एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 बच्चे और 5 महिलाएं थीं। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें दामोह के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर में आज दोपहर दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम इलाके में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया। यह हमला श्रीनगर से करीब 85 किलोमीटर दूर पहलगाम के बैसरन वन क्षेत्र में किया गया। इसमें 4 पर्यटक घायल बताए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम घटना को लेकर गृहमंत्री अमित शाह से टेलीफोन पर बात की है। प्रधानमंत्री ने गृहमंत्री से घटनास्थल का दौरा करने और सभी उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। पाकिस्तान में सिंध प्रांत के जमशोरो जिले में एक सड़क दुर्घटना में 16 लोगों की मृत्यु हो गई और 30 घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि एक वैन में गेहूं की कटाई का काम पूरा करने के बाद लोग घर लौट रहे थे। राहत और बचाव कार्य जारी है। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार शनिवार को रोम में होगा। दुनिया के कई नेता और गणमान्य व्यक्ति इसमें शामिल होंगे। पोप के ताबूत को कल जनता के दर्शन के लिए वेटिकन शहर के सेंट पीटर बेसिलिका ले जाया जाएगा। पोप फ्रांसिस का निधन कल 88 वर्ष की आयु में वेटिकन शहर में उनके निवास पर हो गया था। ऊर्जा आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल 2 दिन की आधिकारिक नेपाल यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य आपसी हितों की प्रमुख ऊर्जा परियोजनाओं पर चर्चा करना और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना है। संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा 2024 के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। आयोग ने नियुक्ति के लिए कुल 1009 उम्मीदवारों की सिफारिश की है, जिनमें 725 पुरुष और 284 महिलाएं हैं। शक्ति दुबे ने पहला स्थान हासिल किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दिल्ली की टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, जबकि लखनऊ 5वें नंबर पर है। प्रतियोगिता में कल हैदराबाद में मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।